Namami nandanam 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 namami nandan आनंद दिन में तो ಗಣಾಧಿರಾಯ
बाद में मर जाएगा एक मिनट के लिए कोई थी तो हम लोग अभी तक बचे हुए हैं, काल के गाल में नहीं चले गए, अस्वस्थ नहीं हो गए और कुछ विघ्न बाधाएं नहीं आई। प्रतिवर्ष की तरह हम लोग अब उपस्थित हैं कृष्ण की यह जन्माष्टमी की यह सेवा करने के लिए। बड़े सौभाग्य की बात यह भी है कि हम लोग मथुरा धाम में हैं जहाँ पर कृष्ण स्वयं आविर्भूत हुए थे। हम गोकुल के करीब में हैं यहाँ पर कृष्ण जन्म ग्रहण किया था, जन्म की लीला जहाँ पर हुई थी, यहाँ पर वही नदी यमुना नदी यहीं पर प्रवाहित हो रही है, दूर नहीं है। वो वही स्थान पर हम लोग हैं जहाँ पर की कृष्ण की लीलाएं हुई थी। विशेष करके कंस चारु मूर्ति इत्यादि का स्तमन यही पर किया था, वही कंस शिला है जहाँ पर की कृष्ण को समस्त मथुरा वासियों ने किन किन रूपों में वादन सदनों में देखा। किसी ने अत्यंत सुंदर स्वरूप मनुष्य के रूप में देखा, गोपियों ने प्राण प्रियतम के समान देखा, मल्लों ने वज्र के समान देखा, कंस ने जम के रूप में देखा, सखाओं ने सखा के रूप में देखा, माता पिता भावयुक्त लोगों ने उनको पुत्र के रूप में देखा, विष्णु वंशियों ने अपने पर देवता के रूप में देखा, योगी लोगों ने सप्तम परम योगिना परम तत्व के रूप में योगियों ने देखा। इसी प्रकार से जो जैसे लोग थे उसी द्वादश रूपों में एक ही कृष्ण को दर्शन किया और यहीं पर कंस को पछाड़ा, चारों मूर्ति को पछाड़ा और अपने राज्य नहीं लेकर के उग्रसेन के सिर पर वहां का मुकुट दे दिया और कहा जैसे देवता लोग भी आपको बलि प्रदान करेंगे, उपहार देंगे और लोगों की तो बात क्या है, विश्व के सभी लोग आपके चरणों में कुपढ़कन और ये सब देंगे और आप यहाँ का राजा है, अपने ईश्वर उनको राज्य के लेने की क्या जरूरत है। यहीं पर समस्त ऋषि महर्षि लोग भी आए मथुरा में और पुनः यहाँ से द्वारका में चले गए। ऐसे ऐसे सब बाल्यकाल से लेकर के द्वारका लीला तक समस्त लीलाएं ये मथुरा मंडल ब्रज मंडल में। हम लोगों का कितना सौभाग्य है, आर पार नहीं, बहुत बड़ा भारी जन्म जन्मों का सुकृति का यह फल है कि हम लोग जन्मभूमि ये ब्रजमंडल में और मथुरा मंडल में हम लोग। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि व्यास जी ने वेदों का विभाग किया, पुराणों की रचना की, वेदांत दर्शन का भी प्रकाश किया, उन्होंने महाभारत की रचना की, अद्भुत ग्रंथ महाभारत श्रीमद् भागवत और गीता में पढ़ने के लिए कुछ बुद्धि, गुरुजनों की सेवा और कुछ साधन भजन चाहिए सब गीता में प्रवेश करेंगे। वेदांत में ऐसे तैसे नहीं होगा प्रवेश, उसमें तो दांत सब तोड़ने पड़ेंगे, सब बुद्धि के अकल के जितने दांत हैं वो सब टूट जाएंगे, सब फिर वेदांत होंगे, उसमें बिरले लोगों का ही प्रवेश होगा। इस वेदांत में जो व्यास जी के प्रकटित वेदांत है इसमें शंकराचार्य जी के 32 दांत उखड़ गए, एक तो ही नहीं 32 दांत उखड़ गए, प्रवेश नहीं कर सके, उसके ऊपर में ही बस भूमिका बांधने में लगे रह गए और उसके अर्थों को जगत में शुद्ध रूप में प्रकाशित नहीं कर सके। मध्वाचार्य भी आए, उन्होंने कुछ कुछ रूपों में प्रकाशित किया और जाकर के बद्रीनारायण ने व्यास जी के शिष्य बनकर उनसे पूछा कि हमने वेदांत का जो भाष्य लिखा है आप जरा देखिए तो कैसा हुआ। हाँ अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ है, माने क्या और कुछ कुछ रह गया। रामानुज ने विशिष्टता पर श्री भाष्य लिखा जो श्री जी के अनुकूल था, उसमें ऐश्वर्य पर भावनाएं थी, उन्होंने शंकर के मत को खंडन कर, उसके पहले विज्ञान विष्णु इत्यादि के मत को खंडन कर, भास्कराचार्य के मत को खंडन कर, समस्त लोगों के विचारों को जो मायावाद से संबंधित थे उनको खंड विखंड चूर्ण विचूर्ण करके उनमें श्री भाष्य लिखा, उनमें नारायण को परतत्व बतलाया और जीव और ब्रह्म इत्यादि में विशेषण और विशेष का भाव रखा, सब कुछ किया। उन्होंने व्यास देव से पूछा ये कैसा हमारा भाष्य हुआ, मैं कहा हाँ हाँ ठीक ही हुआ है, उनको भी इसी प्रकार से उत्तर दिया। इसके बाद में हमारे निम्बाकाचार्य पारियास सौर भाष्य उसका लिखा और लोगों ने भी लिखे, किंतु एक जैसी ही विचार उनके रहे, पूर्ण विचार नहीं हुआ। तत्पाश्चित चैतन्य महाप्रभु जी पधारे, उन्होंने सार्वम भट्टाचार्य को वेदांत का अप्रतिम भाष्य श्रीमद् भागवत के पुराण पर आधारित विचारों के अनुसार में परिपूर्णतम विचार से समस्त विचारों का समन्वय करते हुए विश्व में एक अद्भुत चीज को प्रकाश किया, अचिंत भेदाभेद तत्व, और उसी के अनुसार में उन्होंने ये विचार प्रकट किया कि वेदांत भाष्य का यथार्थ तात्पर्य गोविंद जी के सेवा में ही पर्यवसित होता है और इसीलिए इनके बाद में इन्हीं के विचारों को लेकर के गोविंद भाष्य की रचना हमारे बलदेव विद्याभूषण ने जो की और इसी यही व्यास देव जी के परिपूर्ण मन के अनुकूल संपूर्ण भाष्य का सार है। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विचारों को, जीव गोस्वामी के विचारों को, हमारे और कृष्णदास कविराज इत्यादि के विचारों को, इतना के विचारों को लेकर के वेदांत भाष्य का गोविंद भाष्य प्रणी, इसमें उन्होंने श्रीमद् भागवत के समस्त तात्पर्यों को लेकर के उसमें निहित कर दिया। इसके अतिरिक्त व्यास जी ने 18 पुराण भी लिखे हैं जिसमें श्रीमद् भागवत को संक्षेप में लिखा, किंतु तो भी उनको शांति नहीं मिली। समय प्राप्त स्थान में सरस्वती नदी के किनारे कुछ खिन्न मन से बैठे थे। उसी समय में नारद जी सौभाग्य क्रम से आए। उन्होंने कहा, जैसे आपने तो समस्त धर्म कर्म जो कुछ थे आपने सबका निर्माण किया, विशेष करके आपने विचित्र श्रीमद्भागवत महाभारत की रचना की, तो इन ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में, वेदांत में, गीता में, श्रीमद्भागवत में, तो भागवत में उसमें चतुश्लोकी भाग संक्षेप में लिखा था, इसमें किसी का प्रवेश नहीं है, किंतु आपने एक ऐसी सरल सहज उसमें एक महाभारत की रचना की जिसमें लड़ाई झगड़े करने वाले तांत्रिक व्यक्ति की, जिसमें बुद्धि इत्यादि की कोई जरूरत नहीं, फूल बुद्धि वाले लोग भी, जिसमें राजनीतिक और सात्विक बुद्धि वाले लोग भी, जो कि लड़ाई झगड़ा जुआ पाशा ताश खेलते हैं, युद्ध करते हैं और मदिरा पान करते हैं, सब कुछ करते हैं, जिनको कोई अयोग्यता अयोग्यता की कोई भी प्रयोजन नहीं है, महाभारत पर मिले और बस जब तक समाप्त न करे तब तक उनकी बुद्धि ही नहीं बन सकती। ऐसा श्रीमद्भागवत महाभारत की रचना जिसमें स्त्री पुरुष शूद्र डोम चंडाल मेहतर ब्राह्मण क्षत्रिय ब्रह्मवादी इत्यादि बड़े बड़े रीति मातियों से भी गीता इसी का एक अध्याय का पर्व का ये ऐसे ऐसे महाभारत में इन्होंने की अंत में विभिन्न रहे। उन्होंने कहा, आपने सब कुछ किया है, महाभारत जैसा संत रोज ग्रंथ भी आपने लिखा और सब ग्रंथ लिखे हैं, किंतु आपका चित्त प्रसन्न क्यों नहीं? उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर में क्या त्रुटि है। अरे तुम तो जगत गुरु हो, तुम्हारे अंदर में ऐसी कोई चीज नहीं, तुमने ये प्रकाश नहीं किया, धर्मराज के विशेष करके गुरु हो, और जो धर्म का पालन करता है उसका प्रकाश करता है, उसका चित्त सब समय प्रसन्न रहता है। सब ही गुणसान पर भक्ति करे अहम सुख का प्रति आध्यात्मा आत्मा तो प्रसन्न होती है कैसे? भगवान की सेवा से और धर्म से होता है। तो आपने परम धर्म इत्यादि सबका प्रकाश किया किंतु आपका चित्त प्रसन्न नहीं, वह खिन्न हो रहा है, तो इसका क्या तात्पर्य है? गुरु जी उन्हें तो पता नहीं। नारद जी कौन है? ये भक्त है। व्यास जी कौन है? नारायण। नारायण ही आज चैतन्य महाप्रभु जैसे रामानंद से प्रश्न किया, ऐसे ही गुरु और शिष्य का यहाँ पर भी हो रहा है। वहां पर रामानंद गुरु थे और शिष्य कौन ये पूछने वाले महाप्रभु जी, ऐसे ही बहुत सुंदर। और यहाँ पर गुरु कौन है? नारद जी है और शिष्य कौन है? नारायण नारायण है। मेरा चित्त प्रसन्न नहीं रहने नहीं रहना। यदि किसी को रोग हो तो रोगी अपना रोग निर्णय नहीं कर सकता, वैसे उसके नाड़ियों को देख करके लक्षण देख के निर्णय करता है कि कौन सा रोग है इसको और कौन सा इसका पथ और औषधि होनी चाहिए। आप हमारे गुरु हैं, आप बतलाइए मुझे अंदर में कौन सी त्रुटि रह गई जिसको मैं नहीं कर सका। जो आपने कृष्ण लीला का जो परिपूर्ण परिपूर्णतम माधुर्य भाव है और सर्वोत्तम भाव है, आपको आपने प्रकाश नहीं किया, आपने गीता में गुह्य गुह्यतर गुह्यतम सर्वगुह्यतम मत तो प्रकाश किया किंतु उसका आपने विकास नहीं किया। आपने कृष्ण लीला चरित्र को केवल और भगवानों के सदृश उनके लीला का साधारण रूप में वर्णन किया, किंतु कृष्ण लीला की जो खूबियां हैं, इसमें जो माधुर्य है, गोपियों की रस की साधना है, ये सब आपने वर्णन नहीं किया। इसलिए आप संपूर्ण रूप से कृष्ण के लीला चरित्र का वर्णन कीजिए, विशेष करके ब्रज का भाव जिससे प्रकाशित हो, जिससे विशेष करके ऐश्वर्य रहित ऐश्वर्य से ऐश्वर्य तो पूर्ण हो किंतु माधुर्य के द्वारा आच्छादित सख्त बात्सल्य और मधुर मधुर कभी सर्वोत्तम श्री माश्री राधिका जी का जो भाव है उसको आप प्रकाशित करें, तब तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा और आप प्रसन्न हो जाएगा। मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं कैसे लिखूं, कैसे प्रकाश करूं, अजय आप भक्ति के द्वारा चित्त को समाधिस्थ कीजिए, मन को निग्रह करके नहीं, योग के द्वारा पाखंडल योग के अनुसार में आसन जम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि के द्वारा नहीं, आप और न्याय और पाखंडल और सब कारण इत्यादि विषय संसार में मन को निग्रह करने की चेष्टा मत करें। वो उसमें क्या होता है, उसमें चित्त निरावलंब रहता है, उसका कोई आधार नहीं रहता उन योगों में। और भक्ति योग में कृष्ण का पाद पद्म ही आधार होता है, उसमें उनकी लीलाओं में भक्तों का चित्त ऐसा डूब जाता है जो वो जागृत समाधि जैसे में लग जाते हैं। गोपियों की जैसे जागृत समाधि होगी, व्यास जी ने सबसे पहले मन को समाहित करके भक्ति योग के द्वारा समाहित किया, समस्त चिंताओं को दूर कर दिया और उनके लीला के अपने चिंतन में ऐसे लगे मानो कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर के द्वारका लीला प्रत्यक्ष हाथ में रखे हुए आमने की भांति दिखाई पड़ने लगी।